जहाँ आत्मज्ञान की चर्चा होती है वहाँ तीन बातें बताते हैं, एक जीव क्या है, दूसरा ईश्वर क्या है, और इन दोनों का जो वास्तविक स्वरूप परमात्मा वो क्या है, परमात्मा का संबंध ईश्वर से कैसे है, परमात्मा का संबंध जीव से कैसे है, और ईश्वर का संबंध जीव से कैसे है, ये है कितनी बातें बताते हैं। वेदांत संप्रदाय में यही तीन बातें मुख्य विचारणीय है। फिर वेदांत संप्रदाय के अनेक शाखाएं प्रशाखाएं हो गई, अद्वैत वेदांत, भागवत वेदांत, द्वैताद्वैत आदि अनेक इस प्रकार से शाखाएं हो गई, उनमें भी इन्हीं तीनों के संबंध में विचार है। सभी ने संबंधों पर विचार किया है, लेकिन व्यक्तियों की बुद्धि की ही पहुंच को देखते हुए विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न प्रकार के मत रखे। एक संप्रदाय ने यह मत रखा कि ईश्वर अलग है, जीव अलग है, परमात्मा अलग है। एक ने बताया कि देखो ईश्वर जी और परमात्मा ये दोनों ही एक ही तत्व के विभाजन है, विभक्त होकर के ये तीन है, अन्यथा वास्तव में एक ही है। एक संप्रदाय ये कहता है कि इसमें ईश्वर की प्रधानता है और जीव का संबंध है ब्रह्म और कुछ नहीं, ईश्वर का ही रूप है, मुख्य ईश्वर है। एक संप्रदाय ये कहता है कि ब्रह्म ही प्रधान है, वही एकमात्र सत्ता है, ब्रह्म का ही रूप ईश्वर है, ब्रह्म का ही रूप जीव है, और ईश्वर और जीव जो है ये है मायोपाधिक है, उपाधियां मिथ्या है, इसलिए एकमात्र ब्रह्म ही सर्वत्र है। ये अंतिम जो सिद्धांत है ये अद्वैत वेदांत का है, शंकराचार्य जी का प्रतिपादित किया हुआ। अपने जो मूल शास्त्र हैं जैसे कि गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, उनकी भाषा इस प्रकार की है कि आजकल ये जितने की आचार्यों के किए हुए भेद हैं वो सब उसमें एक साथ समाहित हो जाते हैं। वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि ये सब आचार्यों का किया हुआ विभाजन कोई महत्व नहीं रखता, किसी भी प्रकार से तत्व समझ में आना चाहिए, किसी भी प्रकार से परमात्मा तक पहुंचना चाहिए। यदि कोई प्रारंभ में यदि कोई व्यक्ति भेदभाव रखता है कि जगत ईश्वर आदि को अलग अलग मानता है, तो फिर आगे चल करके दोनों में कहीं ना कहीं समन्वय भी कर लेगा, जब विकास होगा तब ये भी समझ में आ जाएगा एक ही तत्व के लिए तीन रूप में चार रूप में, जब और आगे बढ़ेगा तब ये दिखाई देगा कि कई तत्व प्रधान है, जितने भी रूप हैं वो सब ऊपर उपाधि के कारण से हैं, प्रतीक मात्र आभास मात्र हैं, तो क्रम क्रम से ये सब बात समझ में आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि देखो चाहे उपनिषदों का अध्ययन करो, चाहे ब्रह्मसूत्र का, चाहे गीता का, ये ऐसे ग्रंथ हैं कि इनका जितना आप अध्ययन करते जाओगे उसमें नई बात आपको निकलती आएगी। एक बार आपको समझ में आएगा कि देखो जीव और ईश्वर जगत सब अलग अलग हैं, और फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगी अलग अलग है ही नहीं, एक ही तब नई बात निकल आएगी। तो प्रारंभ में वो नई बात जो है वो अंतिम बात प्रारंभ में समझ में नहीं आती, प्रारंभ में जो स्थूल बातें हैं बाहरी बातें हैं वो तो समझ में आते हैं, लेकिन जब इनका अध्ययन करते रहो तो फिर सूक्ष्म बातें भी समझ में आने लगती है, उनका तात्पर्य भी समझ में आ जाता है। ये क्रम इस प्रकार से है, इसलिए जो प्रसंग यहाँ चल रहा है आप देखेंगे कि यहाँ पर इन तीन बातों का वर्णन है, परम परमात्मा क्या है, परमात्मा ही जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ, परमात्मा ही ईश्वर भाव को कैसे प्राप्त हुआ, ये तीनों का वर्णन हो गया। और यही महावाक्य है। महावाक्य में एक तत्पद है, एक त्वम पद है और एक दोनों का युगपद है, दोनों को मिला दिया दोनों पदों को। तो जो त्वम पद है उसका वर्णन यहाँ हो गया। अभी कल देख रहे थे कि जीव क्या है, उसका वर्णन हो गया। अब आगे चलेंगे, आप देखेंगे तो वो जो परमात्मा है ईश्वर है वो क्या है, और ईश्वर परमात्मा किस प्रकार से, परमात्मा ही ईश्वर भाव को कैसे प्राप्त हुआ, ये परमात्मा ही जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ, ये वर्णन इन प्रसंगों में आ जाते हैं। इसलिए सप्तमश महावाक्य की व्याख्या भी यहाँ हो जाती है। तभी तो देखिए, जब ये कहते हैं कि न प्रकाश सूर्य था कि न चंद्र तारकम, तो ये तो वर्णन है पर ब्रह्म परमात्मा का, ब्रह्म ही है वो इस प्रकार। लेकिन वही ब्रह्म जब उपाधियों के कारण से जीव भूता सनातना जीवभूत जीव भाव को प्राप्त हुआ, तो जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ, उपाधियों के कारण प्राप्त हुआ। उपाधियां क्या प्राप्त हुई, पांच ज्ञानेन्द्रिया मन और प्रकृति, तीन गुणात्मक प्रकृति, इनकी उपाधियां प्राप्त करके वही परमात्मा यह अपने आप को जीव करके समझने लगा। बुद्धि में जीव भाव जागृत हो गया, तो ये रचना बन गई जीव की। अब उसको याद रखें कि जीव की स्थिति क्या है, ये शरीर जीव नहीं है, इस शरीर में स्थूल शरीर में जो बात करने वाला चैतन्य है, चेतनात्मा है, वही ये जीव है। और वो जीव सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की उपाधियों को धारण करता है, इन्हीं की उपाधियों के कारण से वो जीव है। जब एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है तो यही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दूसरे शरीर में जाते हैं, और जब वो शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं तो इनके इनमें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जो व्याप्त चेतना है वो चेतना ही वहां पहुंच गई मानो, और वहां स्थित होकर के उस शरीर के द्वारा जीव व्यवहार करने लगता है। जैसे पिछले शरीर में व्यवहार करता था वैसे अब दूसरे शरीर में जाकर के व्यवहार करने लगा। जैसे पिछले शरीर में वो जागता था, स्वप्न देखता था, सोता था, ऐसे जब दूसरा शरीर मिल गया तो वहां पर भी जागने लगा, स्वप्न देखने लगा और सुषुप्तावस्था में सोने लगा, तीनों अवस्थाओं में। और फिर तीनों अवस्थाओं में उसे भोग प्राप्त होने लगे। जागृतावस्था में स्थूल भोग प्राप्त होने लगे, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म भोग प्राप्त होने लगे, और सुषुप्तावस्था में सुख मात्र एक ही भोग के आराम से सोए, बस वही आराम से सोने का सुख एकमात्र वो सुख रह गया। तो ये तीनों प्रकार के सुख ये जीव को प्राप्त होते रहते हैं, जागृतावस्था में, स्वप्नावस्था में, सुषुप्तावस्था में। और इन्हीं के भोगों को भोगता हुआ जीव नए संस्कार प्राप्त करता रहता है, नई वासनाएं बनती रहती हैं, उसकी भौतिक प्रकृति प्रबल होती रहती है, और उसी के बल पर वो शरीर छोड़ करके एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता नहीं। तो ये वो जीव का विज्ञान है, यदि अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो जब तक ये न समझ में आवे कि जीव की संरचना कैसी है, इसका रूप कैसा है, इस जीव में क्या क्या विद्यमान है, तब तक आप उस जीव भाव से छुटकारा पा करके आत्मभाव को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए यदि ज्ञान को आत्मा को प्राप्त करना है, लेकिन पहले ये देखना है कि जीव क्या है। जीव को अगर ठीक ठीक से समझ ना जाए और जीव की उपाधियां अगर छूट जाए, अज्ञान के स्थान पर ज्ञान आ जाए जीव को, तो वही फिर अपने आप को समझे कि हम जीव नहीं, हम तो आत्मा। जैसे कोई व्यक्ति कलम लेकर के बैठे लिखने के लिए, अपने आप को क्या समझेगा कि मैं लेखक हूं। अगर कलम खाक रख दे और कपड़े जूते चप्पल पहने बाजार चल दे, अब लेखक है, अब लेखक की उपाधि भर आया, कलम भर दी, लेखक की उपाधि खत्म हो गई। अब कैसा है वो, अब यात्री है, बाजार में जाने वाला है, कस्टमर है, दूसरी उपाधि आ गई उसके साथ। इस तरह से उपाधियां, जो उपाधि धारण कर लो उस उपाधि के कारण उसका वही नाम पड़ जाता है, जब उपाधि छूट गई तो उसका वो नाम भी छूट जाता है। जीव ने जो उपाधि धारण कर ली सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से, तो जीव कहलाने लगा। उस उपाधि को उसने छोड़ दिया तो वो आत्मा कहलाने लगा। जब तक जीव था तब तक उसे पुनर्जन्म भी उसे होता था, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में भी जाता था, सुख दुख भी भोगता था। और जहां उसे जीव भाव छूट गया, आत्मभाव को प्राप्त हो गया, तो आत्मा तो अनंत है, फिर वो कहीं न जाए न कहीं आवे, पुनर्जन्म बात समाप्त हो जाती है। और फिर वो भोगता भोग और भोगता का भेद भी नहीं रहता, वो केवल अपने आनंद स्वरूप में विद्यमान है और नित्य निर्विकार होकर के स्थित है, शांत चुप्त होकर के वही अपने आत्मभाव में स्थित रहेगा। ये आत्मज्ञान का फल हो गया। तो अब यहाँ पर कल जो विचार कर रहे थे वो जीव का विचार जो किया था उसे आपको संक्षेप में भी बता दिया। अब आगे देखो, आज एक तो बात ये कि ये जीव भाव क्या है और ईश्वर भाव क्या है, इसको समझने के लिए कल अंतिम श्लोक में भगवान ने बताया। तो देखो, जिनको ज्ञान दृष्टि है उनको तो सब दिखाई देता है, और जिनको ज्ञान दृष्टि नहीं है उनको ये सब बातें नहीं दिखाई देती। माने ये सब देखा भी जा सकता है, लेकिन कैसे? ज्ञान दृष्टि से। जब अपने अंदर ज्ञान की दृष्टि जागृत हो तो ये सब दिखने लगे कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जब तक ज्ञान दृष्टि जागृत नहीं हुई, रे के नेत्र उन्मीलित नहीं हुए, तब तक बस वो अपने आप को यहाँ तक कि जीव भी नहीं समझता, शरीर समझे रहता। और इस शरीर के द्वारा बाह्य जगत की वस्तुओं में अपने तादात्म्य करके, और बस मैं गृहस्थ हूँ और मैं कर्मचारी हूँ और मैं अधिकारी हूँ और मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, बस इसी चक्कर में बना रहता है। तो ये कल का वर्णन हो गया, लेकिन कल अंत में जो कहा पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से देखते हैं, तो इस बात को जरा स्पष्ट करना था, इसलिए अगला श्लोक आता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा का अर्थ क्या है कि यतन्तो योगनश्चैनं पश्यन्ति, तो पश्यन्ति वही है, वही पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इस श्लोक पर आया पश्यन्ति, कौन पश्यन्ति? योगिनः पश्यन्ति, और यतन्तो योगिनः पश्यन्ति, और पश्यन्ति आत्मन अवस्थितम्, अपने भीतर स्थित अपने आत्मस्वरूप को वो भी देख पाते हैं, अपने जीव भाव को भी जान पाते हैं, आत्मभाव को अपने भीतर अपने आप में ही जान लेते हैं। अब विशेष बात क्या बताई, जो पिछले वे पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से देखते हैं, तो ज्ञान चक्षु कहाँ से आए? वैसे तो कहते हैं देखो, शास्त्र की कृपा से ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं, गुरु की कृपा से ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं, लेकिन ये सब होने पर भी व्यक्ति जब तक कि स्वयं प्रयास नहीं करता तब तक ज्ञान चक्षु नहीं होते। स्वयं प्रयास के माने क्या है कि पहले योगी न योगी बने, और फिर यतनता, और फिर यत्न करने वाला बने, यत्नी बने। ये दो बातें जब बनेंगी तब ज्ञान चक्षु जागृत होंगे। शास्त्र का सहारा कर लो, आचार्य का सहारा लो, सब बातों को समझो, शंका समाधान कर लो, भली जहां सब बातों को जान लो, लेकिन आप चलो फिर क्या कि अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, सत्वगुण बनाने के लिए निष्काम कर्म का योग करो। योगी नाम का माना निष्काम कर्म योगी, गीता के अनुसार बिल्कुल एक निश्चित तप हो गया, योगी ना पहले योगी बनो। जब तक कि आप धर्मात्मा हो, अधर्मात्मा हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, तब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलते। जब अधर्म को छोड़ करके धर्म पर आ जाओ और धर्म को भी निष्काम भाव से करो, फल भोग की कामना से न करो, तब आप योगी बने। कौन से योगी बने? निष्काम कर्म योगी बने। जब निष्काम कर्म योगी बन गए तब कहा कि निष्काम कर्म योगी से सत्वगुणी बन गया, मन शांत हो गया, अंतर्मुखी हो गया, वैराग्य आ गया, ये सब उसका योग का फल है। ये इसको सबको एक साथ एक सदन बोल देते हैं, संसिद्धि। योगी को तो संसिद्धि प्राप्त हो गई। अब जो संसिद्धि प्राप्त हो गई तब क्या करे कि अब वो यतनता यत्न करे। ये यत्न शब्द से यतनता से मालूम होता है यत्न करने वाला, यत्न करने वाला ना कोशिश करे, आगे एफर्ट करे, कुछ और आगे बढ़े। और इसी संत शब्द जो है ये है, इसी से यति बना है, जो यत्न करता है वो यति है, जो यत्न नहीं करेगा वो अयति। अयति सब श्रद्धे होते तो छठवें अध्याय में शब्द आया, अयति ही श्रद्धे होते तो, जो अयति है और श्रद्धा होते तो श्रद्धा तो है उसमें, लेकिन यत्न नहीं करता। तो मान लो श्रद्धा तो है कि परमात्मा है, परमात्मा मुझे प्राप्त करना है, बात ठीक हो गई, लेकिन अयति ही और यत्न करता नहीं तो फिर क्या होगा? सारी जिंदगी ऐसी बीत जाएगी, शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर फिर प्राप्त होगा, चलो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करो, फिर स्वर्ग जाओ, फिर मनुष्य शरीर बने, आगे फिर देखा जाएगा। लेकिन यत्न करना पड़े। अयति का परिणाम ये होगा कि जो परमात्मा में श्रद्धा विश्वास भक्ति प्रेम रखने वाले हैं उनको भी दोबारा सही धारण करना पड़ेगा, इसलिए यत्न करना आवश्यक है। जो यत्न करना करता है वो यति कहलाता है, और यति कौन कहलाता है? यति के ही पर्यायवाची शब्द क्या है? सन्यासी। यति का नाम सन्यासी है। छठवें अध्याय में भगवान ने सन्यासी की व्याख्या नहीं बता दी, तो देखो सन्यासी कौन होता है? कहते देखो कि जो राग द्वेष इत्यादि में प्रवृत्त नहीं होता वो सन्यासी है, और जो राग द्वेष में पड़ा हुआ है वो सन्यासी नहीं है। तो राग द्वेष रहित होकर के अपने हृदय में स्थित हो, राग द्वेष रहित होगा तो बाह्य जगत से उसका ध्यान हटेगा, अंतर्मुखी होगा, और जब अंतर्मुखी होगा तो अपने हृदय में ठहरने का अभ्यास करेगा। जब अपने हृदय में ठहरेगा तो वही परमात्मा को ढूंढेगा। तो ये परमात्मा को अपने हृदय में ढूंढने का नाम यत्न है। तो फिर वही धीरे धीरे उसके नेत्र खुलने लगते हैं, वही परमात्मा का प्रकाश उसे दिखाई देने लगता है और ज्ञान के नेत्र खुलने लगते हैं। इसलिए बोले यतन तो योगिना चयनम एनम पश्यंती, एनम पश्यंती माने इस जीव को भी। पहले तो वो योगी, वो यत्न करने वाला व्यक्ति अपने आप अपने भीतर इस जीव को देखता है, और फिर आत्मन्यवस्थितम और अपने आप अपने स्थित अपने उस जीव में फिर आत्मभाव को भी प्राप्त होता है, उसको भी देख लेते हैं। अब जब दूसरी तंत्र में क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप बिना योग किए हुए यत्न करने लगो तो कुछ हाथ में लगे, तो सब बातें साफ खुलासा कर देते हैं, और कहीं ना कहीं कोई न कोई व्यक्ति की कोई न कोई गलती रह जाती है, कहीं ना कहीं कठिनाई रह जाती है। यत्न की इतनी बात कही, यतन तो योग न सैनम दश्यंती, यत्न करने वाले योगी लोग उसको देखते हैं, लेकिन अब अगली पंक्ति में कहते यतन तो, लेकिन कैसे? अकृतात्मा न, यत्न तो किए लेकिन न योग साधना की और न कृतात्मा हुए, तो फिर न एनम पश्यंती, एनम ना पश्यंती, फिर न उन्हें जीव दिखाई दे न उन्हें आत्मा दिखाई दे। अचेत सा, क्योंकि वो अचेत सा है, ये जो है अकृतात्मा न अचेत सा। अब ये तीन शब्द हो गए, योगी न अकृतात्मा न चेत सा। अब बस विचार करो, तो गीता विचार करने के लिए कितना मैटर है, आप एक श्लोक ले लो, अब इनको सबको देखो। योगिना कहते योगिना पश्यंती, यतनता योगिना पश्यंती, और दूसरी पंक्ति में कह दिया यतनता, यतंत तो यतन तो ठीक है, लेकिन अकृतात्माना, अकृतात्माना के माने ऊपर का योगी भी ले आओ, किसके माने आपने योग साधना भी नहीं की, अयुक्त हैं, अयोगी हैं, कुयोगी हैं, योग साधना नहीं की, तो उसका परिणाम क्या हुआ? अकृतात्माना, कुछ काम करने योग नहीं करोगे, अकृतात्माना रहोगे। अकृतात्माना के माने चित्त शुद्ध नहीं हुआ, अचेतसा के माने है आपका चित्त शुद्ध नहीं हुआ। तो जब तक कि आपका, वैसे तो कृतात्माना के माने है सत्कर्म करने वाला, ठीक ढंग से कार्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला कृतात्माना, लेकिन सत्कर्म करने वाला फिर योग का अभ्यास करे और चित्त शुद्ध हो तब वो चेतसा हो, जब चेतसा हो तब यत्नता, तब यत्न करे, और जब यत्न करे तब पश्चिम की आत्मा ने व्यस्तन, तब उसका यत्न जो है वो सफल होगा। अब एक उदाहरण में आप देख लो कि मान लो एक छात्र है जिसने हाई स्कूल पास नहीं कर पाया, दो तीन साल फेल हो गया, उसे ना अंग्रेजी आ गए ना हिंदी आ गए, तो जब देखो तब जीरो जीरो, लेकिन उसने क्या किया कि बीए की कक्षा में जा बैठा, कहा कि ये तो लोग पास नहीं करेंगे कभी हाईस्कूल वाले, हम अपने आगे बढ़ेंगे चलो। तो बी की कक्षा में जा बैठा, वहां पर प्रोफेसर आकर पढ़ाने लगे। जब पढ़ाने लगे तो पड़ोस कहा कि हम जो पढ़ाए हैं उसे सब रद्द डालेंगे, उसे हम सब रद्द डालेंगे। ऐसी धुन लगा करके पहुंचा प्रोफेसर ने पढ़ाना शुरू किया, उसने लिखना शुरू किया, किताबें लिए, रखना सब शुरू किया। तो आप क्या समझते हो, तो बी ए पास कर लेगा नहीं? बी ए पास कर चाहिए की रटन तो लगा है, चाहिए की मेहनत करता है, बी ए क्यों नहीं पास करेगा? अरे भाई जो उसके अधिकारी था बी ए में जाने का, वो अधिकार ही अभी उसे प्राप्त नहीं है। जब हाई स्कूल पास नहीं कर पाए तो बेचारा बी ए क्या पास करेगा? ये नहीं केवल मेहनत ही मेहनत से थोड़ी पास कर दे रहे हैं, बस ऐसे ही अपने आध्यात्मिक साधना भी क्रमिक है। प्रारंभिक साधना नहीं की, अगर किसी ने अधर्म छोड़कर के धर्म का अभ्यास नहीं किया तो आगे उसकी क्या यात्रा, आध्यात्मिक विकास उसका क्या होगा? धार्मिक धर्म के मार्ग पर भी चला लेकिन निष्काम कर भी योग नहीं किया तो फिर आगे की यात्रा फिर कैसे रहेगी? ये सब सीढ़ियां पर सीढ़ियां हैं, एक के बाद एक साधना व्यक्ति को करनी ही पड़ती है। पिछली साधना अगली साधना के लिए व्यक्ति को योग्य बनाता है, तब वो व्यक्ति आगे बढ़ करके परमा आगे बढ़ता जाता है और क्रम क्रम से अंततम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच भी जाता है। अब आपको देखो एक खास सुनाते हैं उपनिषद, जो बात भगवान ने यहाँ कही है वही बात उपनिषद में भी आती है। एक तो कैवल्य उपनिषद आप पढ़ते रहते हो, उसमें आप देखते हो श्लोक आता है कैवल्य उपनिषद में प्रारंभ में कि योग साधना यह है आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान किनको प्राप्त होता है, अधिकारी का वर्णन करते हैं। न कर्मणा न प्रज्ञया न धनेन त्यागेन एकम अमृतत्व मानुषो परेण नाकम निहतम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशन्ति। तो यहाँ यत्न भी है, यति भी है, यत्न करने वाला भी है, लेकिन उसके पहले क्या है? न कर्मणा न प्रजया न धनेन, ये सब क्या है? जब तक कि व्यक्ति इनसे आसक्ति से इनसे सबसे छूटता नहीं, योग साधना नहीं करता, निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसके अंदर ये बातें सब नहीं आती। जब तक नहीं आती तब तक वो यत्न क्या करे? इसलिए दो बातें उस श्लोक में भी हैं कि पहले वैराग्य लाओ और फिर यत्न करो, चित्त को संशुद्ध करके फिर वैराग्य के द्वारा ज्ञान के द्वारा यत्न करते हुए अपने हृदय में परमात्मा को प्राप्त करो। इसी प्रकार से एक दूसरे उसमें उपनिषद में है ना विरतो दुश्चरितान, दुश्चरितान न विरता, जो दुश्चरित्रों से विरत नहीं हुआ, न दुश्चरितान विरता, अब यही अभी अटका हुआ है, अधर्म में ही अटका हुआ है, वहीं से नहीं निकल पाया है। तो कहते न दुश्चरितान न अविरता दुश्चरितान न अशांताय न असामाजिता न अशांताय, और जिसका के मन शांत नहीं हुआ, असमाहिता जो अपनी इंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हुआ, उसकी साधना देते हैं नहीं की न अशांत मनसो हो बापी, और जिसका के मन भी शांत नहीं हुआ उसका यही प्रज्ञाने नहीं वह आत्मानम आत्मयात, वो व्यक्ति ऐसे जिसे नहीं किया उसको ये है आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसकी प्रज्ञा जागृत नहीं होती। यहाँ जो भगवान ने कहा ज्ञान चक्षुषा, उपनिषदों में उसी को कहते हैं प्रज्ञा, उनकी प्रज्ञा बुद्धि जागृत नहीं होती और उनको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए इसमें एक तो ये है दुष्कृत्य है उनका छोड़ना चाहिए, और दूसरे फिर उसके बाद धर्म के मार्ग पर हो तो धर्म के जो फल हैं उनसे वैराग्य होना चाहिए, अनासक्ति भाव अभ्यास डालते डालते होना चाहिए। व्यक्त व्यक्ति हो तो वैराग्य के द्वारा फिर आगे आगे जब बढ़ेगा तब यत्न यहाँ चलेगा, जब वैराग्यवान हो गया तो वैराग्यवान अधिकारी व्यक्ति हो गया, अब यहाँ वो ज्ञान विज्ञान या भक्ति उपासना की साधनाएं जब करेगा तो यही उसके यत्न है, इन यत्नों के थ्रू हो परमात्मा तक पहुंच जाएगा।